ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தேசா தரங்க கே பீச் மே பசா ஹுவா வியக்தி உதல் புதல் ஹோதா ஹே, वैसे ही जो अनर्थ के कारण वो उतल पुतल हो रहा है, इसलिए उसको तरंग माना है। और जिस प्रकार समुद्र में अत्यंत कोलाहल उत्पन्न होता है तरंग आने पर, भयंकर अंदर शब्द उत्पन्न होता है, हम लोग नहीं सुनते अंदर ही अंदर, वैसे ही ये संसार सागर में उत्पन्न हुआ कोलाहल कौन है, तो वहां बता दिया ये महारौरवादी जो नरक है, पुराण में उसको 21 बता दिया, ब्रह्म सूत्र में उसको 7 बता दिया, सप्त ते करके, रौरव है, कुंभिपाक है, पुन्नाम है, ये अलग अलग जो नरक है, नरक कहते हैं जीर्णाति ही क्लेशम प्रापयति इति नरक। नृणाति अर्थात क्लेशम प्रापयति, जो हम लोगों ने किया हुआ जो पाप है, इस पाप कर्म के लिए वहां दंड देते हैं जिसमें, इसलिए उसको नरक कहा दिया। और जो रौरवादी जो नरक है उनमें वहां के जो जीव है नरक में पड़े, वो चिल्लाते रहते हा हू हू मुंचा मुंचा करके, अरे मुझे यहां से बाहर निकालो, त्याग दे दो करके। गरुड़ पुराण में खूब वर्णन किया है उसका। तो इसलिए जो चिल्ला रहे जोर जोर से, यही उस संसार सागर में उत्पन्न हुआ कोलाहल है। ये संसार सागर का वर्णन है। तो यहां तक संसार सागर का वर्णन करने के बाद, जैसा सागर में नौका चलती है, पार होना है आपको, हम सबको पार होना है सागर से, इसका किनारा है मोक्ष बता दिया, तो वहां किनारे तक जाने के लिए नौका तो चाहिए, और दूर है किनारा, बहुत दूर है, समीप होने पर भी अति दूर है तद्वंती के, इसलिए दूर तक जाने के लिए नौका में बैठ के जाना है, बीच में कुछ ना कुछ पाते या होना चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, नहीं तो बीच में मर जाएंगे। इसलिए वहां बता दिया जो पातेय है अर्थात मार्ग के लिए उपयोगी, जैसा हम यात्रा में जाते हैं दूर यात्रा, किंतु आजकल यात्रा ट्रेन में मिल जाता है, वहां तो नहीं मिलेगा, वहां कोई देने वाले नहीं है, स्वयं को लेके जाना पड़ेगा, यहां तो खरीद कर सकते हैं, चलो खरीद करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो कहां से खरीद करेंगे, तो इसलिए यहां भी आवश्यक है। वो पाते या कौन है, उस नौका में बैठ करके हम इस संसार सागर का जो किनारा है मोक्ष तक जा सकते हैं। तो हां बताया भगवान भाष्यकार ने, सबसे पहले सत्य, ये सत्य है, सत्य भी एक नहीं है, सत्य का भी दो स्वरूप है, एक साधन स्वरूप है, एक साध्य स्वरूप है। तो साध्य स्वरूप है वो परमात्मा है, सच्चिदानंद हम कहते, और साधन स्वरूप है जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुने हैं वैसा ही बोलना, पहले भी एक दिन बताया था मैंने, हम सत्य तो बोल रहे, उससे दूसरे का कोई हानि ना हो, ये सबसे पहले उसको ख्याल रखना चाहिए। तो सत्य है सबसे बड़े साधन माना है, क्योंकि सत्य तो हमारा स्वरूप है और ये मिथ्या है आगंतुक। ये चाहे तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं, पहले भी एक दिन बताया था, आज प्रतिज्ञा करके जाइए, आज दिन भर मैं झूठ बोलूंगा, प्रतिज्ञा करके आप पालन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते हैं। आप यदि झूठ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आप भूखे हैं, कोई पूछेंगे भोजन किया, आपको कहना पड़ेगा नहीं किया। अब यदि भोजन किया है नहीं किया, और नहीं किया तो भोजन किया। आपके पास पूछेंगे गाड़ी किसकी है, आपकी, मेरी नहीं है, दूसरा उठा के ले जाएंगे, क्योंकि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, संभव ही नहीं है। किंतु आप यदि प्रतिज्ञा करें मैं दिन भर सत्य बोलूं, ये तो पालन कर सकते हैं, क्योंकि सत्य तो हमारा स्वरूप है और मिथ्या तो माया का स्वरूप है। हम कितना अपनाएंगे उसको, थोड़ा तो मान सकते हैं, ज्यादा नहीं, अंततः वो धोखा देंगे आपको। अपना है ही नहीं, आप दूसरे का अपनाया, वो कितना आपका साथ देंगे। तो इसलिए जो सत्य एक ऐसा चीज है वो पाते या माना है, इसलिए कहा दिया शास्त्र में, सत्येनाधार्यते पृथ्वी, सत्येना तपते रवि, सत्येना वायवो वान्ते, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये पृथ्वी जो टिकी है किससे, सत्य से। बोलते गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है, पहले एक दिन बताया था, संकर्षण। संकर्षण का मतलब है परमात्मा की एक शक्ति, इसलिए शेष को भी संकर्षण कहते हैं। इसलिए शेष का चित्र दिया, शेष ने धारण किया करके, सामान्य लोगों को समझाने के लिए पुराण ने। संकर्षण का मतलब अच्छे प्रकार से खींच के पकड़ना, परमात्मा की शक्ति है, वो सत्य है, सारा जगत है उसी के शक्ति से चल रहे हैं। हम मिट्टी खा रहे, वो ये मिट्टी हमारा शरीर को बढ़ा रहे, एक मिट्टी, अन्न क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से आया हुआ अन्न मिट्टी है, तो शरीर को पोषण कर रहे। पत्थर भी मिट्टी है पृथ्वी का, उससे हम सिर फोड़ रहे एक दूसरे का, अर्थात वही परमात्मा की शक्ति अन्न में पोषकत्वेन बैठी है, और वही परमात्मा की शक्ति पाषण में मारकत्वेन बैठी है, वही परमात्मा की शक्ति है सूर्य में, सारा जगत को प्रकाश रूप से बैठी। तो इसलिए सारी ये परमात्मा का ही शक्ति, इसलिए सत्य ना धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी टिकी है सत्य के द्वारा, और सत्य नहा तपते रवि, ये सूर्य भी जो तप रहे सत्य के द्वारा है। सत्य यदि ना होता तो प्रलय हो जाएगा, और सत्य ना वायु वांति, जो हवा चल रही है निरंतर सत्य के द्वारा, सर्वम सत्य प्रतिष्ठिता, ये सारा सत्य में प्रतिष्ठित है, क्योंकि सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है, हमारा भी स्वरूप है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सबसे पहले यहां सत्य को बता दिया। यदि आपके पास सत्य है, सारा आपके पास अवश्य आएगा। यदि सत्य नहीं है, आपके पास जो है वो भी चल जाएगा। जैसे एक राजा था, राजा के मन में विचार आया, ये जो हमारे यहां बहुत व्यापारी है, ये व्यापारी उदास ना हो जावे, इसलिए एक बहुत बड़ा उन्होंने बाजार बना दिया व्यापारियों के लिए। और घोषित भी किया, इस बाजार में यदि सामान विक्री करने के बाद यदि बच जाए कोई भी, मैं खरीद करूंगा, व्यापारियों को निराश नहीं करूंगा। तो बाजार में खूब व्यापारी आने लग गए। एक बार एक लोहार ने, शिल्पकार ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाया लोहे की, वो भी किसकी, शनिदेव की, बहुत सुंदर मूर्ति बना दिया, इतनी बढ़िया बना दिया लोहे की। शनि की मूर्ति शनिवार का दिन और अमावस्या पूरा एक दिन आ गया, क्योंकि शनिवार को लोहा अच्छा नहीं मानते। बाजार में तो ले गए, उस दिन अमावस्या भी थी, शनिवार भी, और शनि की मूर्ति, खरीद करना तो दूर बात है, उसको देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुए। सुबह से सायंकाल तक रहे, इतनी बड़ी मूर्ति किसी ने भी नहीं खरीद किया। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने पहले ही कहा दिया था जो बचेगा मैं खरीद करूं, राजा ने खरीद किया। उतने में राजा का जो मंत्री था उन्होंने कहा, राजन इसको खरीद मत करो, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है, शनिवार भी है, शनि की मूर्ति है, आपको शनि लगेगा, बिल्कुल मत खरीद करो। राजा ने कहा, नहीं, मैंने वचन दिया हूं खरीद करना है। राजा की पत्नी भी आ गई, उन्होंने भी कहा दिया भवन इसको खरीदो मत, राजा ने नहीं माना, मैंने वचन दिया खरीद दिया राजा ने। रात्रि के समय में निष्ठावान राजा था, सबसे पहले एक एक लक्ष्मी उनके सामने, धनलक्ष्मी है, विद्यालक्ष्मी खड़ी हो गई, यद्यपि अमूर्त है मूर्त रूप से सामने आ गई, और कहा, राजन मैं आपके पास नहीं रह सकती, क्योंकि आपने ऐसा शनि का मूर्ति खरीद किया, इसलिए हम छोड़ के जाएंगे, या तो उसको त्यागो। राजा ने कहा, नहीं, अष्टलक्ष्मी छोड़ के गई, उसके बाद धर्म ही साकार रूप से सामने खड़े हो गया। राजा को कहा, राजन इसको त्यागो, नहीं तो मैं भी जाऊंगा। राजा ने कहा, मैं वचन मुझे पालन करना है, मैं सत्य वचन बोलना है। धर्म भी गया, उतने में जो सत्य है वो भी साकार रूप धारण करके आ गया सामने, और कहा, राजन मैं भी चल रहा हूं। तभी राजा ने, तू कैसा जाएंगे, तेरे रक्षा के लिए मैं सब कुछ त्याग दिया, तू कैसा जाएंगे। उतने में सत्य रुक गया, सत्य रुकते हुए धर्म भी आ गया, सारे लक्ष्मी भी उसके पास आ गए। इसलिए सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सारे सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य ही हमारा स्वरूप है। इसलिए हम भगवान मत्स्यकार बता, सबसे पहले ये पाते या में हम लोगों को सत्य होना चाहिए, क्योंकि तभी उस नौका में बैठ करके ये संसार रूप जो समुद्र के किनारे जो है मोक्ष, वहां पहुंच सकते, ऐसे ही संसार है। दूसरा बता रहे वहां आर्जवता सरलता, ये भी पाते या है, सरलता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। गीता में भी देखे भगवान ने वहां आर्जवा गिना दिया है, जितना मनुष्य के अंदर छल कपट होता है उतना ही वो भगवान से नहीं अपना स्वरूप से दूर होता है। छल और कपट है किसका, माया का ही है। परमात्मा में कोई छल कपट नहीं है, अपने स्वरूप में कोई छल कपट नहीं है, ये स्वरूप ने जिसके साथ संबंध किया उसमें छल कपट है। इसलिए सरलता होना चाहिए, उसके बिना भी संभव नहीं है। और आगे बता रहे दानम, जो दान है, दान में भी वहां बता दिया है शास्त्र में, सबसे बड़ा दान है या तो अभय दान अथवा विद्या दान। स्पष्ट बता दिया, सर्वेषामेव दानानां इदमेव एकम उत्तमम, अभयम सर्वभूतानाम नास्ति दानम परम ततम। जो अभय दान है, आपके पास कोई दीनहीन होकर आया उसको अभय देना, अथवा विद्यादान, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता, अलग अलग दान गिना दिया है, तो ये भी होना चाहिए। और दया, सभी प्राणियों के प्रति दया, ये भी पाते या गिना दिया है। और उसके बाद अहिंसा, अर्थात हिंसा का अभाव, हिंसा भी एक प्रकार से नहीं होता है। एक तो स्वयं हम हिंसा करते वो कृत मानते हैं, कभी कभी हम हिंसा नहीं करते हैं, दूसरे के द्वारा करवाते हैं, वो कारित हो गई, कभी करते भी नहीं करवाते भी नहीं, अनुमोदन करते हैं, अनुमोदित हो गई। जैसा लोक में देखा जाता है, किसी के घर में सांप आ गया, आपने मारा भी नहीं मरवा भी नहीं, दूसरा जो मार रहे बोलता आप ठीक किया, अच्छा किया, अनुमोदन किया, तो कृत है, कारित है, अनुमोदित। उसके बाद उसका भी भेद किया है, मृदु मध्य और तीव्र। एक तो मृदु होती है, जैसा मच्छर आ गया आपने मार दिया, ये हिंसा हो गया, मृदु हो गया, स्वयं किया आपने। और एक मध्य हिंसा होती है, उससे थोड़ी ज्यादा, जैसे कोई पशु को मार दिया। और एक तीव्र अथवा अरिमात्र होते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपना खास मित्र आदि को मारा, वो कृत हिंसा में तीव्र अथवा अरिमात्र हिंसा कहा दिया। तो वैसे ही कृत भी तीन हो गए, मृदु मध्य और तीव्र अर्थात अरिमात्र। कारित भी तीन माना है, अनुमोदित भी तीन माना है। और जो हिंसा जो कर रहे उसका कारण भी तीन माना है, तीन कारणों से मुख्य रूप से हिंसा करता है वो। सबसे पहले क्रोधात, क्रोध आता है मनुष्य के अंदर, तभी क्या करता है, स्वयं किसकी हिंसा करता है। कभी कभी क्रोध आने से स्वयं करने में समर्थ नहीं होता है, दूसरे से करवाता है और क्रोध के द्वारा अनुमोदित भी करता है। और दूसरा है लोभात, लोभ से भी हिंसा करता है। जैसा हाथी को जो मारता है, क्योंकि हाथी का दांत मिले लोभ के कारण, कस्तूरी मृग को मारता है कस्तूरी मिले, और शेर को मारता है छाल मिले, ये लोभ के कारण हिंसा किया। कभी स्वयं नहीं करता है, लोभ के कारण करवाता है, दूसरे को देता है, चलो तुझे पैसा दे रहे तुम लाओ। कभी कभी अनुमोदन भी करता है, अरे तूने किया ठीक किया, कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो, अनुमोदन किया लोभ के कारण। तो पहले क्रोध से किया अथवा करवाया, अनुमोदन किया, लोभ के द्वारा स्वयं किया अथवा करवाया अथवा अनुमोदन किया, वहां भी तीन है। और तीसरा कारण है मोहाद, मोह के कारण भी हिंसा करता है। जैसा अपना परिवार है, पुत्र को कोई रोग आ गया, रोग ठीक नहीं हो रहा है, सोचा कोई इसको भूत चढ़ा होगा, चलो जाके माता जी को बलि चढ़ाओ, बकरी चढ़ा दिया, आपके पुत्र को बचाने के लिए जाके माता जी को आपने बकरी का बलि चढ़ा दिया, ये मोह है ना। तो मोह के कारण आपने उसकी हत्या किया। कभी कभी होता है, अरे मैं ब्राह्मण हूं, कैसा बलि चढ़ाओ, दूसरे को दे दिया पैसा, तुम चढ़ाओ, यह कारित हो गया। तो मोह के द्वारा भी स्वयं करता है, कभी करवाता है, अनुमोदन करता है। इसी प्रकार जो हिंसा है, 27 प्रकार की हिंसा हो गई, कृत, कारित, अनुमोदित, मृदु, मध्य और तीव्र, और उसके बाद लोभ से, क्रोध से, मोह से होने वाले, ये 27 हिंसा है। इन हिंसों से बचने के लिए बता रहे अहिंसा। तो इसलिए अहिंसा ही पातेय है, मार्ग में जाने के लिए आवश्यक है। और उसके बाद भगवान भाष्यकर जी बता रहे क्षमा, ये भी हमारे रास्ते में जाने के लिए पातेय अर्थात भोजन है। क्षम का मतलब है अंतर इंद्रिय निग्रह। ये हम तो सुनते हैं वेदांत श्रवण करने वाले, अंतर इंद्रिय निग्रह क्षमा नहीं। यदि आपने मन को निग्रह किया तो वेदांत का चिंतन कैसा करेंगे? इसलिए वहां अर्थ किया है वेदांत का जो चिंतन है विचार है उसको छोड़ करके अन्य विचार का चिंतन नहीं करना, ये क्षमा है। वेदांत का तो चिंतन करना ही है, उसका तो मनन करना ही है आपको। सारा मन को ही यदि आप निग्रह किया तो वेदांत का चिंतन कहां से करेंगे, शास्त्र का चिंतन कहां से करेंगे? इसलिए क्षम का लक्षण नहीं। मन का जो निग्रह है अंतर इंद्रिय निग्रह है, ये क्षम नहीं है। वेदांत आदि श्रवण को छोड़ करके अन्य जो चिंतन हो रहे अनात्मा उसका निग्रह करना वो क्षम है। क्योंकि हमारा मन दो चिंतन करता है, एक अनात्मा विषय का चिंतन अशुभ वासना, और एक आत्मा विषयक चिंतन शास्त्र का चिंतन शुभ वासना। इसलिए यहां अशुभ वासना का जो चिंतन है उसको निवृत्त करना ही शब है। और उसके बाद शम के बाद बता रहे दमहा। दम का मतलब है बाह्य इंद्रिय निग्रह। यहां भी आपको लक्षण परिवर्तन करना पड़ेगा। बाह्य इंद्रिय निग्रह दमहा ये सामान्य लक्षण है, किंतु वहां भी जितना आवश्यम भावी है उससे अतिरिक्त विषयों के प्रति इंद्रियों को ना जाने देना, यही दम है। और बिल्कुल यदि आप इंद्रियों को दमन किया, शास्त्र को देखेंगे किससे, शास्त्र को पढ़ेंगे किससे आप? तो शास्त्र को आप देखेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं, चिंतन कैसा करेंगे? चिंतन नहीं करेंगे तो दोष को हटाएंगे कहां से? इसलिए दम का मतलब है केवल इंद्रिय का निग्रह नहीं, जो अवश्यम भावी है उससे अतिरिक्त इंद्रियों का प्रवृत्त ना होना, न तो इंद्रियों को फोड़ देना भी दम नहीं है। कुछ लोग इंद्रियों को नष्ट करते हैं, शास्त्र कभी भी इसको सम्मत नहीं देते। भगवान ने दिया है इंद्रिय आपको नाश करने के लिए नहीं, भगवान ने दिया है शरीर नाश करने के लिए नहीं, भगवान ने दिया है किसी ना किसी मकसद से दिया है। भले हमने कर्म किया है उस कर्म से प्राप्त हुआ, वो कर्म को हटाने के लिए दिया है, इसलिए नाश करने के लिए नहीं। इसके बाद बताया दमा। दम के बाद बता रहे धैर्य। मनुष्य के अंदर धैर्य भी होना चाहिए। यदि धैर्य ना हो, थोड़ा सा सुना वेदांत, अरे इसमें कुछ भी नहीं मिला बेकार है, इतना साल तक भजन करते रहे बेकार हो गया, इतना साल वेदांत चिंतन किया बेकार हो गया। जैसा कोई बड़ा पेड़ है अथवा बड़ा पत्थर है, आप तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसको हथौड़ा मार रहे, पत्थर कुछ हिल रहे नहीं, आपने सोचा ये टूटने वाला छोड़ दे दो, इतना जो मेहनत किया बेकार है, सोचा बेकार तो नहीं हुआ, वो पत्थर शिथिल हुआ है आपका हथौड़े से। वैसे ही हम जो सुन रहे वेदांत बेकार नहीं है, इसे संस्कार पड़ रहे एक, लेकिन संस्कार हर क्षण में पड़ता है। स्वप्न हम देख रहे भले मित्य है किंतु संस्कार वहां भी है, उसका यदि संस्कार पड़ रहा है इसका क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो मृत्यु से पहले उस तक मैं प्राप्त करूं, ये धैर्य भी होना चाहिए। इस प्रकार यही पातेय माना है, ये मार्ग में आवश्यक भोजन माना है, और इन भोजनों को लेकर ज्ञान रूप नौका में बैठेंगे तो ये संसार रूप सागर के किनारे हम पहुंच सकते हैं, ये वर्णन किया। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम शांति शांति शांति।